ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराश्रीमद्भागवतम स्कंदति अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 और 6। तो बोर्ड पर 6 लिखा हुआ है, मैं 5 पढ़ता हूँ। तथापि तद् भि प्रेतं जानन् हमरिन्दं प्रस्तुतं वागमं भर्तुं पादविश्लेषणाक्षणम्। हनुमान, हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछों को सह पाना मेरे लिए संभव न था। श्लोक संख्या 6। अद्राक्षमेकमासीनम् विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनाम्। अद्राक्षमेकमासीनम् विचिन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे लक्ष्मी देवी के आश्रय हैं, तात्पर्य जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेते हैं। उद्धव ने भगवान को स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा, जैसा आश्रयहीन व्यक्ति करते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है, अतएव वे हर वस्तु के आश्रय है। अतएव सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं था। ओम अज्ञान तिमिरा दर्श ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवेशं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासनि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हे अरिंदम विदुर, वंश का विनाश करने की उनकी इच्छा जानते हुए भी मैं उनका अनुसरण करता रहा, क्योंकि वे अपने क्योंकि अपने स्वामी के चरण कमलों के बिछोड़ को सह पाना मेरे लिए संभव न था। इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे और गहन चिंतन करते देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के आश्रय हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवत में किस प्रकार से उद्धव विदुर जी को ये वर्णन करते जा रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम जितने भी इस संसार में शास्त्र या ग्रंथ अवेलेबल है उनमें श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट या सर्वोच्च है। इसलिए भागवतम की जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में ही भागवतम में वर्णन आता है, निगम कल्प तरुर गलितम फलम शुकमुखादामृत द्रव संवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। तो भागवतम को भागवतम तो रसिक भक्तों के लिए है। रसिक भक्त वो है जिनके अंदर भौतिक तृष्णा या भौतिक भोग करने की या कोई भी भौतिक इच्छा जिनके हृदय में नहीं है, या फिर जो पूर्णतया भगवान के शरणागत हो गए हैं, ऐसे वास्तव में रसिक भक्त हैं। और रसिक का मतलब यह भी है कि जो रस का पान करना चाहते हैं। जैसे हमें अलग अलग भौतिक शरीर इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम अलग अलग भौतिक रस को भोगना चाहते हैं। सुअर का शरीर इसलिए मिलता है जीवात्मा को कि वो गंध को खा सके, मनुष्य शरीर में वो नहीं खा सकता, उस रस को अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए सुअर का शरीर। मांस आदि खाना है, खून पीना है, तो शेर या बाघ या सिंह का शरीर उसे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो रसिक भक्त है वो वास्तव में श्रीमद् भागवतम को पी सकते हैं और भागवतम को चख सकते हैं, भागवतम के मधुरता को अनुभव कर सकते हैं। बाकियों के लिए क्या है? असंभव है। हम बाकी लोग तो कौवे के समान है। कौवा क्या करता है? गंध को खाना चाहता है, कचरे का ढेर जहां पड़ा होता है वहां में भी कुछ और अच्छी चीजें भी हो सकती है दूसरे स्थान में, लेकिन उस पर कौवा नहीं जाएगा। कौवा कहां जाता है? जहां गंदगी है, कचरे का ढेर है, वहां जाएगा और उसमें ढूंढता रहेगा, उसमें ही कुछ रस या कुछ खाद्य की जो चीजें हैं उसको ढूंढेगा। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, हम लोग कौवे के भांति हैं। श्रीमद् भागवतम जैसा मधुर ग्रंथ व्यास देव ने हमें प्रदान किया है, लेकिन भागवतम को सुनने के लिए, भागवतम को पढ़ने के लिए या भागवतम की चर्चा करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। तो ये भागवतम जितने भी वैदिक ग्रंथ है, इसलिए वैदिक शास्त्रों को कहा गया है निगम कल्प तरु। और कल्प तरु क्या होता है? सारी इच्छाओं की पूर्ति करने का सामर्थ्य रखता है, डिजायर ट्री। तो निगम कल्प तरु और गलितम फलम, सारे शास्त्रों को यदि उपमा दी जाए वृक्ष के, तो उसका फल, क्योंकि वृक्ष का असली आस्वादन थोड़ी उसके जड़ों को खाके किया जा सकता है, पत्तों को खाके किया जा सकता है, उसकी जो छाल है उसको खाके किया जा सकता है, नहीं। जो वृक्ष का सारा रस इसमें होता है, एक फल में होता है। तो उसी प्रकार से जितने भी शास्त्र है, वेद उपनिषद, तंत्र शास्त्र आदि, पुराण, इन सब में इन सब का यदि जूस निकाला जाए, तो वो जूस क्या है? श्रीमद् भागवतम है। इसी कारण से वो कहते हैं द्रव अमृत संवितम। ये जो अमृत द्रव्य है जिसको एक व्यक्ति को पीना चाहिए, इसी कारण से तो मरने के लिए ये हो गए थे परीक्षित महाराज, मृत्यु के कगार पर खड़े थे, तो उनके लिए शुकदेव गोस्वामी चाहे तो अमृत भी ला सकते थे स्वर्ग से, या शुकदेव गोस्वामी क्या परीक्षित महाराज इतने शक्तिशाली राजा थे वो इंद्र के पास से क्या ला सकते थे, अमृत ला सकते थे। तो लेकिन फिर भी वो शुकदेव गोस्वामी के पास जाते हैं और शुकदेव गोस्वामी एक ही दवाई उनको बताते हैं, मृत्यु के लिए एक ही दवाई है और वो कौन सी है, कृष्ण कथामृत। कौन सा अमृत, कृष्ण कथामृत। तो कृष्ण कथामृत जब कानों में जाता है तो व्यक्ति का जो मृत मरने की जो भावना है या पुनरपि बार बार मरने जो उसको पड़ता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए तो शुकदेव गोस्वामी जब प्रवचन देने वाले थे, कृष्ण कथा को सुनाने वाले थे, तो देवतागण अमृत का कलश लेके आ गए, इंद्र आदि सारे देवता शुकदेव गोस्वामी के पास, और कहा हे शुकदेव आप क्या करो, ये अमृत परीक्षित को पिलाओ, उसको तो जीवित रहना है, लेकिन जो कृष्ण कथा अमृत है ना वो हमें पिलाओ। कितने चतुर है देवता। शुकदेव गोस्वामी ने कहा आप तो यहां बिजनेस करने आए हो, कृष्ण कथामृत की तुलना इस संसारिक जगत में जो स्वर्ग है वहां प्राप्त होने वाले अमृत से नहीं की जा सकती। इसलिए जो कृष्ण कथा दूसरों को वितरण करता है उसको इस जगत में सबसे बड़ा दाता कहा गया है और वो भगवान का सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने जब राजा प्रताप रुद्र के मुख से श्रीमद् भागवतम के रास पंच अध्याय को सुना तो चैतन्य महाप्रभु उठ के खड़े हो जाते हैं और राजा को आलिंगन करते, जिस राजा का मुंह वो देखना नहीं चाहते थे। सन्यासी हमेशा दूर रहता है विषयी लोगों से, जो जिनके अत्यधिक धन है जो भोग में लगे हैं उनसे क्या होता है, दूर रहता है, क्योंकि उनके शक्ति में उस सन्यासी के हृदय में भी भोग करने की भावना जागृत हो सकती है। तो महाप्रभु कभी भी राजा प्रताप रुद्र से मिलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जैसे राजा प्रताप रुद्र तो महान भक्त थे, उन्होंने जैसे कृष्ण कथा चैतन्य महाप्रभु को सुनाया, महाप्रभु सब कुछ भूल गए और उठ के राजा प्रताप रुद्र का आलिंगन करते हैं और वो कहते हैं भोलिदा 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 का मतलब आप सबसे बड़े दानी हो, आप सबसे बड़े वदान्य हो, क्योंकि हे राजा तुमने जो मुझे सुनाया है ये तुमने मुझे रत्न दिए है। कृष्ण कथा कैसी तुलना करते महाप्रभु, रत्न के समान है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि आप योग्य नहीं हो, कृष्ण कथा को धन के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए जो भागवत कथा करते पैसा वक्ता को देकर वो वास्तव में रजोगुणी कथा है, और रजोगुणी कथा में जब पैसे इन्वॉल्व होते हैं तो ना बोलने वाले की शुद्धि होती है ना सुनने वालों की शुद्धि होती है, वो केवल मनोरंजन होता है। कौन सा रंजन, मनोरंजन। लेकिन कृष्ण कथा किसके लिए है, कृष्ण रंजन के लिए। रंजन मतलब आनंद देना, किसको आनंद देना, कृष्ण को। लेकिन ये गाने बजाने के साथ पैसा लेकर जो कथाएं करते हैं वो वास्तव में मनोरंजन, केवल मन को रंजन कर रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, इसलिए शास्त्र प्रेरित नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं क्या ऐसे हजारों भागवत सप्ताह क्यों ना हो, लेकिन तभी भी उस भागवत कथाओं से किसी को लाभ होने वाला नहीं है। इसी कारण से भागवतम में हम 34 कल में देखते हैं राजा पृथु के बारे में। महाराज पृथु ने जब यज्ञ किया तो उस यज्ञ में चार कुमार आए थे और उस यज्ञ में भगवान भी स्वयं प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने चाहा कि महाराज पृथु आप कुछ याचना करो, कुछ मांगो। तो पृथु महाराज क्या मांगेंगे भगवान से, अभी सोचो हमारे सामने तो रोज ही भगवान खड़े हैं गोविंद देव, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता वो खड़े हैं, हमें पता है ये हिल नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, ये चल नहीं सकते, क्योंकि हम उनको भौतिक आंखों से देख रहे हैं। तो महाराज पुत्र के सामने जब भगवान प्रकट हो गए उनके यज्ञ में, तो भगवान ने कहा कुछ मांगो, तो उन्होंने क्या मांगा होगा? अब सोचो, हमें कुछ कहा जाए मांगने के लिए, हम क्या मांगेंगे? अपने लिए मांगेंगे, और वो भी क्या मांगेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा रुपया, ये संसार में सबसे बड़ा कोई है? हाँ, कुछ क्या है? रुपया है। हमें कुछ और याद नहीं आता, 24 घंटे हमारा जो मति है वो केवल रुपया के बारे में सोचते रहता है। अरे कम हो गया, थोड़ा बचा है, आगे कितना बढ़ेगा, है कि नहीं? भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों में हम केवल रुपया का चिंतन करते हैं। तो ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं, राजा आदि हुए हैं, वो क्या मांगते भगवान से? जैसे राजा इंद्रद्युम्न जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी से क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने तीन चीजें मांगी कि हे जगन्नाथ, मुझे क्या दो जिनके लिए जगन्नाथ जी प्रकट हो गए इस संसार में। ऐसे राजा इंद्रद्युम्न अपनी पत्नी गुंडीचा के साथ खड़े थे, तो जगन्नाथ को कहते हैं कृष्ण को कि मुझे तीन चीजें दो। सबसे पहली चीज क्या? मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। आप सोचो, हम तो मरते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मुझे क्या है? पुत्र ही न ग्रहम ही शून्यम। चाणक्य कहते हैं गृहस्थ जीवन का मतलब है उसके जीवन में क्या होना चाहिए? पुत्र होना चाहिए। पुत्र पिंड प्रदायते, क्योंकि वंश परंपरा को आगे बढ़ाना है तो शादी करने का प्रथम उद्देश्य क्या होता है? पुत्र होना चाहिए। इसलिए तो पुत्री को ही नहीं चाहता, कन्या नहीं चाहता, क्या चाहते हैं? पुत्र चाहते, क्योंकि पुत्र क्या कर सकता है? पिंडदान कर सकता है। तो लेकिन ऐसा पुत्र चाहिए, कैसे होना चाहिए? ध्रुव के समान, प्रहलाद के समान, प्रभुपाद के समान। हाँ, पुत्र महान भक्त होना चाहिए, नहीं तो शास्त्र कहते जो स्त्री पुत्र को जन्म देती है और यदि वो भक्त नहीं है तो वो स्त्री सुवर्णी के समान है। कितना कठोर बोला है शास्त्र में, आप सोचो। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हम चाहते हैं कि पुत्र हो, लेकिन पुत्र ऐसे नहीं होना चाहिए कंस के जैसा, हाँ, हर्ष शोक के जैसा, या फिर हिरण्यकश्यप के जैसा नहीं, रावण वो भी तो किसी ना किसी के पुत्र थे। तो पुत्र पिंड प्रदायते, तो व्यक्ति को लगता है कि पिंड दे सकता है, तर्पण आदि कर सकता है पुत्र, तो मैं मेरी जो गति है अच्छी हो सकती है। तो लेकिन यहां वास्तव में राजा इंद्रद्युम्न क्या कह रहे हैं? मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। बल्कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान के लिए इतना विशाल मंदिर बनाया, इतना धन आदि था, तो कोई पूछे कि इंद्रद्युम्न क्यों नहीं पुत्र मांग रहा था? उन्होंने कहा क्योंकि मेरा पुत्र होगा तो भगवान आपका मंदिर, आपका धन संपत्ति वो किसका समझेगा? खुद की समझेगा, और उसका दुरुपयोग करेगा, वो अपने भोग के लिए यूज करेगा, भगवान के भोग के लिए नहीं, जिसके द्वारा सारे कुल का विनाश हो जाएगा। कृष्ण का थोड़ा बहुत धन हम या कुछ वस्त्र यूज करते हैं तो उसके हमें क्या होते हैं? रिएक्शन भोगने पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए पुत्र। तो भगवान को भौतिक पुत्र नहीं मांगा, तो भगवान ने कहा पुत्र मैं बनूंगा आपका। इसलिए तो भगवान रथ यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं, अपने मंदिर को छोड़कर किसके वहां जाके रहते हैं? राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा का जो मंदिर है, स्थान है, गुंडीचा मंदिर है ना जगन्नाथपुरी में, भगवान अपने श्री मंदिर को छोड़ते हैं और गुंडीचा मंदिर जहां महारानी गुंडीचा इंद्रद्युम्न रहा करते थे वहां जाते हैं, 9 दिन 7 दिन रहते और कहते कि वास्तव में मैं कौन हूं? आपका पुत्र हूं। तो ऐसा आप सोचो, कृष्ण पुत्र बने तो इससे बढ़कर क्या चाहिए? वसुदेव, नंद, देवकी आदि जो है, यशोदा माता वगैरह, इन सब के पुत्र कौन बने? कृष्ण बने। उन्होंने तपस्या की और मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान के समान दूसरा कौन हो सकता है? भगवान ने कहा मैं ही आऊंगा। तो इस प्रकार से दूसरी चीज इंद्रद्युम्न ने मांगी थी जगन्नाथ से कि आपके जो हाथ है, उंगलियां हमेशा गीली रहनी चाहिए, कैसे रहने चाहिए? गिले। गिले का मतलब है पूरे दिन आपको भोग ग्रहण करना होगा, इसलिए जगन्नाथ को इतने सारे भोग अर्पित किए जाते हैं। मतलब एक समय में 25,000 लोग खा सकते हैं, इतना भोग एक बार कौन खाते हैं? जगन्नाथ जी खाते हैं। जगन्नाथ पुरी आप जाते तो विश्व का सबसे बड़ा किचन है, 1,000 जो पंडाल है वहां कुकिंग करते हैं, 700 चूल्हे हैं। कितने चूल्हे हैं? हम अपने घर में एक चूल्हे में परेशान रहते हैं, हाँ यहाँ मंदिर में भी 2 चूल्हे होंगे, लेकिन वहां जगन्नाथ जी के वहां क्या है, 700 चूल्हे है। हजारों पुजारी, हजारों सेवक वहां सुबह से शाम तक कुकिंग करते रहते हैं, कोई और बिजनेस नहीं है। भगवान दिन रात खाते रहते हैं, इसलिए उनकी उंगलियां हमेशा कैसी रहती है, हाथ धोने का समय नहीं है, सोचो ऐसे नहीं कि भीड़ लगी रहती है लाइन है, अरे हाथ धोने के लिए लाइन में खड़ा नहीं, वहां तो खाते रहते। तो इसलिए ये दूसरी चीज मांगी, इसका मतलब राजा इंद्रद्युम्न सेवा करना चाहता है भगवान, भागना नहीं चाहता। मतलब भगवान की उंगलियां गिनी मतलब कुकिंग करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कि मार्केट से कुछ बना के भगवान को अर्पित करते रहो छुट्टी, हाँ मैं तो खुश हूँ भगवान, फल फूल ड्राई फ्रूट्स खाते रहो और बीकानेर का स्वीट खाओ और कौन सा है हल्दीराम का मिठाई खाओ, हाँ और मैं बस चुस्त हूँ सोती रहूंगी या सोते रहूंगा, नो किचन नहीं। मतलब इंद्रद्युम्न ने कहा कि आपकी उंगलियां गीली रहें, मतलब गुंडीचा और इंद्रद्युम्न महाराज तैयार थे उनकी सेवा के लिए, कि हमें क्या होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए हमारे पास। सेवा के बिना भक्त का जीवन अंधकार में है। और तीसरी चीज क्या मांगे कि हे जगन्नाथ देव, आप सदैव आपके जो मंदिर है उसके द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए पूरे दिन रात, इसलिए भगवान जगन्नाथ बस 4-5 घंटे सोते हैं। रात को 1 बजे भी जाओगे तो मंदिर में आप दर्शन मिलेगा आपको, 12 बजे जाओगे तो भी आप दर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दर्शन से सारे जगत का उद्धार हो, हाँ भगवान की कृपा 2 चीजों से प्राप्त होती है वहां, एक तो प्रसाद से और दूसरा दर्शन से। तो वैसे ही महाराज प्रथु भगवान से मांगते हैं, क्या मांगते हैं, वो कहते हैं न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्नयत्र युष्मच्चरणाम्बुजा सव महत्तमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो विदस्त्वकर्णायुतमेषमेवर। न कामये नाथ, हे नाथ मैं और कोई इच्छा नहीं करता हूं, तद अपि क्वचिन, वो कहते हैं कि मैं आप में तादा में या मिल जाने की इच्छा नहीं करता हूं, क्योंकि आप में मिल जाने में आपके चरण कमलों की सेवा करने का अमृत रस नहीं है। सेवा में क्या है? रस है। सेवा करने से क्या मिलता है? एक विशेष प्रकार का आनंद एक भक्त को मिलता है। तो वो कहते हैं कि मैं तो एक ही चीज चाहता हूं, मैं 10 लाख कान चाहता हूं आपसे। कितने लाख कान? 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मैं आपसे मांगता हूं, जिससे क्या होगा कि आपके शुद्ध भक्तों के द्वारा उनके मुखारविंद से आपके चरण कमलों की महिमा का जब वर्णन होता है उसको मैं सुन सकूं। क्या कर सकूं? बस पृथु महाराज भगवान से और कुछ नहीं मांगते, वो कहते मुझे 10 लाख कान दे दो। अबे हमारे 2 कान हमें भारी है, हाँ ये 2 कानों ने इतना परेशान करके रखा है, हाँ तो भगवान ने इसलिए 1 मुंह दिया है 2 कान दिए हैं, कम बोलो ज्यादा क्या करो सुनो, हाँ तो वो कहते हैं कि जो अमृत आपकी कृष्ण कथा में रखा है ना उसको प्राप्त करने के लिए 2 कान काफी नहीं है, मुझे कितने कान चाहिए? 10 लाख। सोचो मतलब कितनी इच्छा होगी उनके भगवान के बारे में सुनने के लिए। तो सोच सकते हैं कि कृष्ण कथा में कितना अमृत छुपा हुआ है, कृष्ण कथा में कितना अमृत है। जब भगवान के शुद्ध भक्त वर्णन करते हैं तो जो एक प्यासे के भांति जो भक्त भागता है और उसको पीना चाहता है, और वो कहते हैं सर्वोत्तम श्लोक महान मुखाच्युतो भवत पदाम्बोज सुधाकरामिला स्मृतिर पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमान कुयोगिनामनो वितरल वितरत्यलं वरे। वो कहते हैं जब ये महान भक्त आपकी कथा का वर्णन करते हैं श्लोकों के माध्यम से, तो आपके चरण कमलों में केसर के कण होते हैं। किस चीज के कण? भगवान के चरण कमलों में हमेशा तुलसी होती है और दूसरा केसर के कण होते हैं। तो जब भगवान के जो भक्त कृष्ण कथा अपने मुख से निकालते हैं, तो उस कृष्ण कथा के साथ ये चीज मिक्स हो जाती है। क्या चीज मिक्स होती है? कृष्ण के चरण कमलों के केसर के कण मिक्स हो जाते हैं। और जो व्यक्ति उसे सुनता है भक्त के मुख से, तो वो कथा वो वाणी उस केसर के कण जो कृष्ण के चरणों का स्पर्श किए हुए हैं, वो उस बद्ध जीवात्मा जो भगवान को भूला है उसके कानों में प्रवेश करते हैं और उसका उसके हृदय में भगवान का जो स्मरण और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है ये जागृत हो जाता है। क्या जागृत हो जाता है? भगवान के साथ संबंध जागृत होता है और भगवान का अत्यधिक स्मरण जागृत हो जाता है। और इस प्रकार से वो कहते हैं इसलिए मैं केवल निरंतर आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से आपकी इस कथाओं को सुनना चाहता हूं और मेरी कोई कामना नहीं है। तो इस प्रकार से भागवत को सुनने के लिए या भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट है। तो इस श्लोक में जो उद्धव और विदुर के बीच में संवाद है, और दोनों बड़े दिग्गज बड़े बड़े भक्त हैं, उन दोनों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। एक जो विदुर है आयु में बड़े सीनियर है, उनकी आयु ज्यादा है, उद्धव यंग है, लेकिन विदुर उद्धव से जिज्ञासा करते हैं और उद्धव जिनका हृदय कृष्ण स्मरण से भरा हुआ है, इसलिए वो पहले वृंदावन लीलाओं का वर्णन करते हैं, फिर द्वारका की लीलाओं का वर्णन करते हैं, और अभी ये जो वर्णन हो रहा है इसमें रिसेंटली उन्होंने वर्णन किया पिछले श्लोक में कि भगवान ने अपनी इच्छा के अनुसार यदुवंश का क्या किया? विनाश किया। कौन सी लीला करके? मौसल लीला। मौसल मतलब मुसल की लीला। इस यदुवंश के नाश की लीला को मौसल लीला कहा जाता है। तो उस मौसल लीला से भगवान ने यदुवंश का नाश किया। और फिर भगवान उद्धव कहते हैं कि ये करने से पहले मुझे उन्होंने बताया था कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्योंकि यदुवंश इस पृथ्वी का सबसे बड़े वंश था, उसको भगवान के अलावा कोई मार नहीं सकता। तो भगवान ने योजना बनाई, भगवान ने मरवाया, और उससे पहले उद्धव कहते मुझे उन्होंने बताया था कि उद्धव तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ। उद्धव भी तो यदुवंशी है कि नहीं? लेकिन उद्धव भगवान के क्या है? बहुत प्रिय सखा है। तो ऐसे उद्धव को कहते हैं तुम बद्रिक आश्रम जाओ, तो लेकिन उन्होंने कहा मैं गया नहीं। कब तक नहीं गया? मैं अपने स्वामी को हमेशा देखना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने उन सबको मरवाया, फिर भगवान चलने लगे कृष्ण उस स्थान से। चलते चलते कृष्ण कहां गए? सरस्वती नदी के तट पर, और वहां एक वृक्ष के नीचे उन्होंने वृक्ष का आश्रय ग्रहण किया। तो इस श्लोक में हमेशा प्रभुपाद लिखते हैं कि आश्रय, तो जो साधु संत आदि है वैरागी है उनके पास कोई आश्रय नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, वो भ्रमण करते रहते हैं। वो या तो नदी का आश्रय लेते हैं या वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। वैसे ही जो भगवान इस श्लोक में कहते हैं श्रीनिकेतन, श्रीनिकेतन मीन्स लक्ष्मी, श्री का मतलब है लक्ष्मी, निकेतन का मतलब है वास या घर। तो भगवान जो लक्ष्मी के भी आश्रय है उनके पास कोई आश्रय नहीं है आज, लेकिन फिर भी वो किसका आश्रय लेते हैं? सरस्वती नदी का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि भगवान जब जा रहे थे तो उनको छोड़ पाना मेरे लिए असहनीय था। उनका जो वियोग है कृष्ण से दूर रहना कि अभी कृष्ण मेरे आगमन से हमेशा के लिए चले जाएंगे, इस चीज को उद्धव सहन नहीं कर पा रहे थे। और यही वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण है। हम जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक ही बिंदु पर आने के लिए, क्या कि भगवान से हम वियोग की अनुभूति करें। हम वियोग, जैसे कोई अपनी पत्नी से बहुत प्रेम रखता है, पत्नी दो दिन के लिए मायके चले जाए तो इसको क्या होता है, उससे वियोग होता है। क्यों? क्योंकि बहुत प्रेम है, तो मतलब आसक्ति बनी हुई है, लगाव बहुत है। तो ये भावना किसके साथ होनी चाहिए? हमारे कृष्ण के साथ। सारे भक्ति का ये निष्कर्ष है, भगवान के साथ वियोग या विरह की भावना का उदय करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इतना प्रेम कृष्ण के लिए था। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, युगायतम निमेशेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विदहेन मे। तो इस श्लोक में दोनों लक्षण बता रहे हैं, आंतरिक और बाहरी, जो भगवान के प्रति प्रेम रखता है। तो आंतरिक क्या है, युगायतम निमेशेन, जिसका भगवान के प्रति बहुत अधिक लगाव आसक्ति प्रेम है, तो उसको भगवान के बिना एक क्षण भी एक युग के समान प्रतीत होता है। जैसे प्रेम गोपियों को था, गोपियां कृष्ण को थोड़े समय के लिए भी नहीं देख पाते तो उनको महसूस होता था, इतना दुख उनको होता था कि एक क्षण कृष्ण उनके आंखों से दूर हो जाए तो वो क्रंदन करते थे, उनको विरह होता था। इसलिए वो कभी कभी डांटती है ब्रह्मा जी को, कहती है ब्रह्मा जिसको सृष्टि करना नहीं आता, वो कहते कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई ताहते निमिष कृष्णा के देखी नु मुई। वो कहते कि ब्रह्मा अपने आप को क्रिएटर कहलाता है लेकिन इसको आंखें बनाने नहीं आए। इसने आंखें बनाई लेकिन उनमें क्या दिया उस ब्रह्मा ने, पलके दी। ये पलक झपकती है तो कृष्ण को देखने में बाधा उत्पन्न हो रही थी, किसे, गोपियों। अब सोचो हम तो पलक बंद करना चाहते परमानंद के, है ना, चाहे जपा के समय तो अधिक से अधिक बंद रखना चाहते, क्लास में तो स्ट्रगल करते हैं, यहां गोपियों का एक बार पलक झपकती है वो कहती कितनी बड़ी बाधा है जिससे हम कृष्ण को नहीं देख पा रहे, हमारे पास कृष्ण को देखने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, माया को देखने के लिए हम उत्साही हैं। तो यहाँ गोपियां कहती हैं इतना अधिक प्रेम, मतलब जिसको कृष्ण ने कहा मचिता मदगत प्राण, उनका प्राण तो छोड़ सकती है कृष्ण को बिना देखे, इतना अधिक प्रेम। इसलिए उद्धव कहते हैं कि ये कृष्ण मेरे स्वामी है और मैं उनका दास हूं, इसलिए मैं उनको देखे बिना कैसे रह सकता हूं। इसी कारण से वो भगवान के चरण कमलों में आसक्त थे, चरण कमलों से अत्यधिक प्रेम था। चरणों से प्रेम होना मतलब उनकी सेवा से क्या होगा, होना प्रेम हो जाना। इसलिए शास्त्रों में विशेष रूप से चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी के भक्तों को चैतन्य महाप्रभु से प्रेम था। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए तो यहाँ सार्वभौम भट्टाचार्य आदि रो पड़े, हर भक्त महाप्रभु के साथ जाना चाहता था यात्रा में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपने साथ केवल एक भक्त को ले गए, कौन थे, कृष्णदास। और सारे भक्त अत्यधिक दुखी थे। चैतन्य महाप्रभु 2 साल जगन्नाथपुरी की यात्रा की और वापस जब जगन्नाथपुरी में आए तो उस समय में फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं वापस यात्रा करना चाहता हूं। तो कोई उनको पूछे कि कहां जाना चाहते हो चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूं। तो लेकिन महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन एक अलग रास्ते से जाना चाहता हूं, नवद्वीप से होकर। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप, क्योंकि ये जो भक्त थे हमेशा बहाने मारते थे, चैतन्य महाप्रभु बिना परमिशन के वृंदावन नहीं गए, वृंदावन की कृपा चाहिए, हाँ तो भगवान गुरु वैष्णव के परमिशन के साथ हमें जाना चाहिए, हाँ तब वृंदावन का कृपा हमें प्राप्त हो सकता है। नहीं तो हम वृंदावन जाते हैं तो वो केवल इंद्रिय तृप्ति है, उससे वृंदावन के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न नहीं होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से सिखाया। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा से आए और उन्होंने कहा मुझे वृंदावन जाना है, तो इन भक्तों को लगता था महाप्रभु चले जाएंगे तो हम बहुत दुख के सागर में गिर पड़ेंगे। तो उनको कहते देखो अभी ना कार्तिक मास आ रहा है, कार्तिक महीने में यहाँ रहिए, वहां बहुत ठंड होती है, उसके बाद चले जाइए आप दोल यात्रा जब जब फरवरी मार्च का समय है। तो जगन्नाथपुरी में फरवरी मार्च का समय आता था, चैतन्य महाप्रभु दो भक्तों से परमिशन मांगते थे, एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, दूसरे थे रामानंद राय। इन दोनों के पास जाते थे, कहते थे मुझे आपका परमिशन अनुमति चाहिए, मुझे वृंदावन जाना है। वो कहते हैं अभी दोल यात्रा है, जब ये दशहरे का समय आएगा ना उस समय वातावरण अच्छा होता है, उस समय आप चले जाओ। तो ऐसे दो साल इन भक्तों ने महाप्रभु को क्या किया, बहाना मारा कि अभी ये आ रहा है, अभी गर्मी है, अभी बारिश के दिन है, अभी ठंड के दिन है, ये फेस्टिवल आ रहा है। दो साल तक महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं गए, वो भक्त जैसे कहे वैसे रहने लगे। वो भक्तों का हृदय पानी पानी हो गया, उन्होंने सोचा महाप्रभु जो स्वराट है, स्वतंत्र है, स्वयं कृष्ण है, वो हमसे अनुमति मांग रहे हैं, वो हमसे परमिशन मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा इनके साथ ऐसा छल करना अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अभी बारिश का दिन खत्म होते आप चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु दशहरे के दिन जगन्नाथपुरी से कहां निकलते हैं, वृंदावन की ओर निकलते हैं वहां से। तो महाप्रभु ने कहा मैं नवद्वीप से होकर जाना चाहता हूं, क्योंकि नवद्वीप में मेरे दो आश्रय है, जैसे भगवान भी यहां शेल्टर। इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने केवल आश्रय शब्द 6-7 बार बोला है। तो महाप्रभु ने कहा मेरे भी नवद्वीप में दो आश्रय हैं। तो कौन से दो आश्रय हैं, महाप्रभु कहते हैं एक है गंगा नदी और दूसरा है मेरी माता सची माता। तो देखा जाए चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखाते हैं कि एक भक्त का जो जीवन है आध्यात्मिक जीवन, वो भगवान के या भक्तों के आश्रय में होना चाहिए। हाँ एक होता है ना सना और दूसरा है अनाथ। तो हमें भक्ति अनाथ की भांति नहीं करनी चाहिए, हमें आश्रय लेना चाहिए। एक होता है आश्रित, दूसरा होता है अनाश्रित। हाँ इसलिए गीता में कृष्ण भी कहते हैं, हाँ इस चीज को भगवान भी इस चीज का वर्णन भगवत गीता में करते हैं। तो आश्रय लेने का मतलब ही है कि संसार में कृष्ण से बड़ा शरण देने वाला या आश्रय देने वाला कोई और नहीं है। इसलिए उद्धव भी कहते हैं तीसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के एक श्लोक में 23वें श्लोक में वो कहते हैं कम्वा दयालुं शरणम प्रपद्य, कहते कि आज से बढ़कर आश्रय देने वाला कौन है। पूतना जिसने आपको विषपान कराया फिर भी आपने उसको अपने माता का स्थान दिया, उसी को भी आश्रय दिया, इतने आप दयालु हैं। इसलिए वो कहते कि मैं तो हे कृष्ण आपका आश्रय लेना चाहता हूं। तो कोई व्यक्ति कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही दुर्जन क्यों ना हो, वो यदि कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो सारे देवताओं के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं मामी पार्थ व्यापार श्रित्य एपि सुपाप योनया, कोई पाप योनी पाप पापमय लोग कौन है, तो वो कृष्ण कहते हैं जो पापी भी क्यों ना हो वो मेरी शरण ग्रहण करता है श्रिया वैश्य तथा शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गति। पाप योनि में किसका वर्णन करते हैं, श्रिया वैश्य शूद्र, इन तीनों का कृष्ण कहते ये लोग भी मेरी शरण ग्रहण करते मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं तो ये भी मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से गीता में और एक स्थान में कृष्ण कहते हैं जरावरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ते, माम आश्रित्य, जो व्यक्ति जरा और मरण से दूर रहना चाहता है, बुढ़ापा और मृत्यु। भगवान कहते जरा मरण मोक्षाय, जरा मृत्यु से बुढ़ापे से दूर रहना चाहते हैं, मोक्ष चाहता है उस व्यक्ति को मामाश्रित मेरा आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसी कारण से कोई व्यक्ति भगवान के आश्रय में रहता है तो उसको किसी और व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से गीता में कृष्ण कहते नैव दश्य कृते नार्थो ना कृते न कच्छन न चाश्य सर्वभूतेषु कच्चित् अर्थ व्यपाश्रय। जिसने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण ग्रहण की है, उसको दूसरा कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहता, बाकी कोई और चीज उसको करनी नहीं है। इसलिए तो भागवत में कहते कि व्यक्ति जैसे जन्म लेता है तो उसके ऊपर कई सारे कर्जे चढ़ जाते हैं। जन्म लेता है तो सबसे पहला कर्जा अपने माता पिता का है, माँ 9 महीने उसको पेट में धारण करती है, पिता बीज प्रदान करता है और उसको जन्म देती है। माँ अपने शरीर से उस बालक का शरीर बनाती है, तो कितना बड़ा ऋण है, माता और पिता का ऋण शास्त्र कहते बहुत बड़ा है। और फिर व्यक्ति जन्म लेता है तो बाहर आकर हवा पानी फ्री का इस्तेमाल करता है, लाइट कौन सी लाइट लगाई, भगवान ने एक ही बल्ब लगाया है, सूरज इतना पावरफुल है, ये फ्री का इस्तेमाल करता है तो ये इसका भी हमारे ऊपर ऋण चढ़ता है। फिर बड़ा हो जाता है तो जो वो चीजें कौन दे रहे हैं, देवताओं से हमें प्राप्त होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो शास्त्र आदि समझते हैं अपने जीवन के बारे में, तो साधुओं का ऋण भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो फिर कैसे इनके ऋणों से कर्जे से मुक्त हो जाए, माता पिता का ऋण आपको मुक्त करना है तो आपको विवाह करना पड़ेगा, पुत्र पैदा करना पड़ेगा, तब आप क्या होगे, माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हो। देवताओं के ऋण से मुक्त होना है तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा, और साधुओं के ऋण से मुक्त होना है तो आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। तो अभी किसका ऋण कैसे चुकता करे, समस्या ही समस्या है। इसलिए भागवत में कहा है, गीता के पहले अध्याय में श्लोक प्रभुपाद ने लिखा है, गतो मुकुंद परिहरते कृत, केवल मुकुंद कृष्ण मुक्ति देने वाले हैं, उनकी शरण ग्रहण करने से इस संसार में किसी के भी आप रोने नहीं रहते, ना माता पिता के, ना देवताओं के, ना इस संसार के किसी के भी आप रोने नहीं रहते, सारे ऋण एक स्टॉप में सारे ऋणों से आप मुक्त हो जाते हो। तो इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करने से और कुछ नहीं, इसलिए शास्त्र कहते यस्मिन तुस्ते जगत तुस्त, कृष्ण को संतुष्ट करो, किसी और को संतुष्ट करने के पीछे मत लगो, पेट को भोजन खिलाओ पूरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं यथा करोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा, कि पेड़ के जड़ में पानी देने से उसकी शाखाएं आदि ठीक रहती है। तो उसी प्रकार से भगवान को तुष्ट करने से किसी और को तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज पांडवों ने की ना, जब दुर्वासा मुनि उनके वहां आए, जब ये लोग काम्य वन में थे, द्रौपदी दुर्वासा मुनि अपने 60,000 ऋषियों के साथ शिष्यों के साथ आए, आते ही उन्होंने कहा भूख लगी है भोजनम, तो भीम ने कहा जाओ स्नान करके आ जाओ, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दे। तो द्रौपदी ने तो अक्षय पात्र तो सबको खिलाते थे, फिर वो खाते थे तो उसमें कुछ बचता नहीं था। तो जब देखा द्रौपदी ने कि कुछ भी नहीं बचा है, और दुर्वासा मुनि मीन्स उनसे कोई उन वो बहुत ये है, कठिन है, गुस्से वाले साधु है, थोड़ा सा भी आप उनका कुछ असंतुष्ट करोगे तो आपका पूरा विनाश के बिना नहीं रह सकते। तो दुर्वासा मुनि से कैसे छुट्टी ले, तो द्रौपदी ने सोचा, चिंता में थी द्रौपदी, पांडव चिंता में होते हैं या सुखी होते हैं दुखी होते हैं तो किसका स्मरण करते हैं, कृष्ण का। तो द्रौपदी तो कृष्ण के लिए पागल थी, उन्होंने कहा वो कृष्ण का स्मरण करने लगी, हे द्वारकाधीश हे कृष्ण, तो कृष्ण वहां दौड़ के आ जाते हैं, आते तो देखते हैं कृष्ण भी आकर उस दुर्वासा मुनि की तरह कहने लगे कि मुझे भी भूख लगी है। अभी उन्होंने कहा वो 60,000 पहले गए है, अभी एक और एक आ गया, 61,000 लोग है। तो लेकिन भगवान कहे ना कुछ है कि आपकी किचन में रसोई में अक्षय पात्र था, उन्होंने कहा पॉट ही एक खाली है, मैंने खा लिया है। तो द्रौपदी कहते ले आओ ले आओ, उसमें कुछ होगा, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो देखा भगवान ने हाथ डाला पात्र में, उनके हाथ में छोटा सा इतना शाक का पत्ता आया, शायद पालक का शाक बनाया होगा, कल था ना पालक के पकौड़े, तो पालक का शाक थोड़ा सा उनके हाथ में आया, भगवान ने खा लिया, पालक नहीं था कोई और होगा, खा लिया। तो भगवान जैसे जिह्वा में रखे तो वह स्नान करने वाले 60,000 जो उनके शिष्य और उनके जो गुरु हैं दुर्वासा जी, वो सब डकार देने लगे इतने जोर जोर से कि उनकी आवाज भीम तक आ गई, कृष्ण तक आ गई। तो कृष्ण ने कहा भीम गदा है ना तुम्हारे पास? भीम ने कहा भीम गदा के बिना नहीं चलता, जैसे भक्त बिड़बैग के बिना नहीं चलते, आजकल हम मोबाइल के बिना नहीं चलते, वैसे भीम के साथ क्या है? गदा है। तो भगवान ने कहा जाओ उनको बुलाओ कि प्रसाद इज रेडी, गीता भवन में प्रसाद सर्व हो रहा है, हाँ कोई आ जाए गदा लेके और आपको कहे प्रभु जी चलिए प्रसाद के लिए आपको अकेले में प्रसाद सर्व करते गदा लेकर। तो व्यक्ति के गले प्रभु जी आज भूख नहीं लग रही है, घर से ब्रेकफास्ट करके आया हो, जैसे गदा देखी दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों ने पानी में वो डकार दे रहे थे, उन्होंने कहा उन्होंने सोचा अभी इतना प्रसाद बनाया होगा 60,000 लोगों के लिए, जाकर हम खाएंगे नहीं तो फिर दूसरी चीज खानी पड़ेगी, और वो क्या है? भीम की गदा। तो उन्होंने कहा भीम जी आप आगे चलिए, हम आ ही रहे हैं। तो भीम जी तो आगे चले गए लेकिन कोई ये ऋषि मुनि पहुंचे नहीं, वहा तो शास्त्र कहते चिंता छोड़ देनी चाहिए, इसलिए कृष्ण कहते मां शुचर, हे अर्जुन डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज मां एकम शरणम रजा। तो भगवान कहते सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो, मेरे एकमात्र शरण ग्रहण करो, हाँ तो वो हमें विश्वास होना चाहिए। तो ये पांडवों के अंदर था, द्रौपदी के अंदर था, उसने कृष्ण की शरण ग्रहण की, कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान का शरण ग्रहण करनी चाहिए, और भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं टू टेक शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मींस टू टेक शेल्टर ऑफ द प्योर डिवोटी। भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करने का मतलब है भगवान के शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना। इसलिए शास्त्र जोर देते हैं, भगवान भी इस चीज पर जोर देते हैं कि ये जो शरीर है एक नाव के समान है, और आप भौतिक भव सागर में फंसे हैं, ये नाव सही स्थान पर तभी पहुंच सकती है जब उस नाव में अच्छा कैप्टन हो। इसलिए शुद्ध भक्त या गुरु की तुलना किससे की गई है? गुरु कर्ण धारम कैप्टन से की गई है। तो हमारा जीवन तो नाव के समान है, इसलिए हमारे जीवन में एक भक्त होना चाहिए, गुरु होने चाहिए, जो इस नाव को पार कर सकते हैं भगवान के चरण कमलों में। इसलिए कृष्ण कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति माश्रिता। महात्मा लोग भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रय में होते हैं। दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी, जो कृष्ण की बेस्ट डिवोटी है। तो इसलिए एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपना कल्याण करना है तो भगवान की जो शुद्ध भक्त है आध्यात्मिक गुरु वैष्णव, उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल हो जाते हैं, या फिर अपना जीवन धन्य बनाते हैं, और माया से क्या करते हैं? हम बच जाते हैं। सोचो महाराज शिवी का वर्णन आता है, हाँ जब ये अग्निदेव और दूसरे कौन थे, दो देवताओं ने इंद्र और अग्नि, इन्होंने एक कबूतर बना था और दूसरा चिलबाज पक्षी बना था। तो बाज पक्षी भाग रहा था कबूतर के पीछे भोजन करने के लिए। वो कबूतर उड़ते उड़ते कहां चला गया? महाराज शिवी के पास। शिवी के गोद में जाके बैठा, कहा कि मैं आपकी शरण ग्रहण कर चुका हूं, आपके आश्रय में हो, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो वैसे ही फिर महाराज शिवी क्या करते, बाज कहते कि ये तो मेरा भोजन है, मुझे मेरा भोजन चाहिए। तो शिवी अपनी जान काट काट के उसको क्या करते, उतने वेट का मांस अपना देते, रक्षा करते महाराज शिवी। हाँ, क्योंकि उसने क्या किया, एक महान व्यक्ति का आश्रय ग्रहण किया था। उसी प्रकार से जब हम गुरु और वैष्णव का आश्रय ग्रहण करते हैं तो जो माया हमारे पीछे लगी है, किसके समान है माया? बाज पक्षी के समान, उससे हमारी रक्षा करते हैं गुरु और जो वैष्णव है। इसलिए शास्त्र कहते हैं दो चीजों का आश्रय लेना चाहिए, एक है नाम आश्रय और दूसरा है वैष्णव आश्रय। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 100 श्लोक लिखे है चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा में, उसको कहते हैं सार्वभौम शतक। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु के प्रति स्तुति लिखी, तो उसमें से एक श्लोक में वो कहते हैं संसार सर्प दृष्टानां मूर्छितानां कलो युगे। जिन जीवों को कलियुगा में संसार भोग करने की भावना के सांप ने काट लिया है, उनके लिए औषध क्या है? सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं औषधम भगवान नामम श्रीमद वैष्णव सेवनम। दो ही उनके लिए मेडिसिन है, एक औषध है भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये बेस्ट मेडिसिन है। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं एनेची औषधि माया नाशिबार लागी, हरे नाम महामंत्र लव तुम्हें मागी। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये माया का नाश करने वाली औषधि चैतन्य महाप्रभु अपने साथ लेकर आए और वही हरे कृष्ण महामंत्र है। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या करना होगा? कृष्ण से आपको मांग कर लेना होगा। चैतन्य महाप्रभु लेके तो आए, लेकिन हमें क्या करना होगा? उनसे मांगना होगा कि मुझे चाहिए, हे कृष्ण आपका पवित्र नाम मेरे जीवन में आवश्यक है। तो ये सबसे पहली औषधि है कृष्ण का पवित्र नाम, और दूसरी औषधि क्या है? वैष्णव सेवनम, गुरु की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना। हाँ, ये दो चीजों का व्यक्ति आश्रय लेता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से कृष्ण के आश्रय में है, और फिर माया उसका इस संसार में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। माया का मतलब क्या है? जो वस्तु, जो व्यक्ति, जो स्थान, जिनसे हम कृष्ण को भूलते हैं, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान हमारे लिए क्या है? माया है। हाँ, ये शास्त्र कहते हैं माया मतलब जो है नहीं उसको है मानना। मैं ये शरीर नहीं हूं लेकिन मैं मानता हूं मैं ये शरीर हूं, ये क्या है? माया है। और जैसे मैंने पहली चीज कही, जो भी चीज हमें कृष्ण से दूर ले जाती है, जो भी चीज कृष्ण का स्मरण हमसे छुड़ाती है, विस्मरण कराती है, वो चीज हमारे लिए क्या है? माया है। ये हमें सावधान होना चाहिए। तो आज के श्लोक में यही चर्चा करते उद्धव कि कृष्ण का वियोग उससे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो उनके पीछे चल रहे हैं, और भगवान जो लक्ष्मी को भी आश्रय देने वाले हैं, शेल्टर देने वाले हैं, वो भी सरस्वती का क्या करते हैं? आश्रय लेते हैं। तो भगवान इसलिए कहते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण तारण नहीं तेजे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए आश्रय लेकर, हाँ, तो वो उसका भक्ति या भजन सफल हो सकता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य हमें प्रेरित करते हैं दो चीजों का आश्रय लेने के लिए, ये क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नामाश्रय, कृष्ण के नामों का आश्रय। और दूसरा वैष्णव आश्रय, कृष्ण के जो भक्त हैं, गुरु वर्ग आदि है, उनका आश्रय ग्रहण करना। तो इनका आश्रय हम लेते हैं तो कृष्ण का आश्रय हमारे लिए सरल हो जाता है। हरे कृष्णा।